नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए राज्य के आठ संसदीय क्षेत्रों में 138 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। राज्य से इस बार 3,820 मुस्लिम धर्मावलंबी हज यात्रा पर जाएंगे। गया हवाई अड्डे से 26 मई को रवाना होगा पहला जत्था। और मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद और गया समेत 12 जिलों में गर्म दिवस की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न गठबंधन और राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए लगातार चुनावी सभाएं, रैली, रोड शो और जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री शाह का मधुबनी के बिस्फी में पार्टी उम्मीदवार अशोक कुमार यादव के समर्थन में भी एक चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, वैशाली और सारण लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेता भी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए राज्य के आठ संसदीय क्षेत्रों में नाम वापसी का कल अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद इन क्षेत्रों में 138 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। कुल 79 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। इन क्षेत्रों से 217 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नालंदा संसदीय क्षेत्र से 29, पटना साहिब से 17, पाटलिपुत्र से 22, आरा से 14, बक्सर से 15, सासाराम से 10, काराकाट से 14 और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से 17 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। इधर अग्यौं विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में सभी 9 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। इस चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। और अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात पटना साहिब लोकसभा सीट की। पटना साहिब बिहार के उन 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
मोक्षदायिनी गंगा के दक्षिणी किनारे अवस्थित पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र बिहार की राजधानी पटना के मुख्य शहरी भाग से जुड़ा है। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब का समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास रहा है। वर्ष 2008 में अस्तित्व में आए इस सीट का चुनावी सफर भी बहुत दिलचस्प है। अब तक हुए चुनावों में इस सीट पर भाजपा उम्मीदवारों को ही जीत मिलती रही है। वर्ष 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में भाजपा ने निवर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की जगह रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा। इससे नाराज होकर शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव परिणामों में श्री सिन्हा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी भाजपा ने रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर मैदान में उतारा है। उनके सामने है कांग्रेस के अंशुल अभिजीत। अंशुल अभिजीत कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं और पहली बार चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विधानसभावार शक्ति संतुलन देखे तो 6 में से 4 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर राजद का कब्जा है। दीघा, बांकीपुर, कुमरार और पटना साहिब विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। वहीं बख्तियारपुर और फतुहा राजद के कब्जे में है। चुनाव में मुद्दों की बात करें तो क्षेत्र का समुचित विकास और रोजगार आज भी लोगों की प्रमुख मांग है। इसके अलावा प्रदूषण, जाम और जल जमाव की समस्या प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन चुनाव में स्थानीय मुद्दों की तुलना में राष्ट्रीय मुद्दे अधिक प्रभावी दिख रहे हैं। एक ओर जहां भाजपा उम्मीदवार मोदी सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां और क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के सहारे मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र के 21 लाख से अधिक मतदाता लगातार दूसरी बार भाजपा के रविशंकर प्रसाद पर विश्वास जताते हैं या फिर कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को लोकसभा भेजते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान कल राज्य भर से 18,34,000 रूपये बरामद किए गए। वहीं 40 लाख रूपये से अधिक मूल्य की शराब भी बरामद की गयी। इसके अलावा लगभग 1.5 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए। राज्य से इस बार 3,820 मुस्लिम धर्मावलंबी हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें से 2,189 पुरुष, 1,600 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। हज यात्रियों को लेकर गया हवाई अड्डे से पहली उड़ान 26 मई को रवाना होगी। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अब छात्र छात्राओं को राशि के बदले पोशाक दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में बच्चों को 2 जोड़ी पोशाक के साथ 1 जोड़ी जूते मोजे और टाई उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। इसके अलावा जाड़े में पहनने के लिए बच्चों को स्वेटर भी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIRNews Patna पर भी सुने जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों का तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले में गर्म दिवस की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी की संभावना है।
वर्षा की गतिविधियां कम हो गई है। बिहार में अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क और तापमान में क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चलेगी, वातावरण के नमी में कमी आएगी।
मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा नीट यूजी का कथित तौर पर पेपर लीक होने की जांच सीबीआई से कराने के लिए पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पटना के शास्त्री नगर थाना में दर्ज मामले के आधार पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। याचिका में परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की भी मांग की गई है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2024 में पहले दिन कल 75% से अधिक आवेदकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार परीक्षा देश और विदेश के सभी निर्धारित स्थानों पर सुचारू रूप से संचालित की गई। NTA 8 दिनों तक CUET UG 2024 परीक्षा मिश्रित प्रणाली में आयोजित करेगी, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पेन तथा पेपर से लिखने के विकल्प होंगे। NTA ने बताया कि यह परीक्षा 13 लाख से अधिक आवेदकों के लिए आयोजित की जा रही है। CUET UG देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों को एक ही परीक्षा में भाग लेने का अवसर देती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जून महीने में आयोजित होने वाली UGC नेट परीक्षा के लिए एक बार फिर आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 19 मई तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं 20 मई तक आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदन में सुधार के लिए 21 से 23 मई तक विंडो उपलब्ध रहेगा। एनटीए ने नेट के लिए आवेदन की तिथि दूसरी बार बढ़ाई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई सत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 30 जून तक नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्व मध्य रेलवे में 1 अप्रैल से 14 मई के बीच बिना टिकट यात्रा करने और रेलवे एक्ट का उल्लंघन करने वाले 4 लाख से अधिक यात्रियों से 31 करोड़ 55 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने ये जानकारी दी। औरंगाबाद जिले के चक्रबंधा जंगल क्षेत्र के बजरुखिया पहाड़ से नक्सल उन्मूलन अभियान की टीम ने 3 प्रेशर IED बम बरामद किया है। SDPO अमित कुमार ने बताया कि बरामद IED का वजन 3-3 किलोग्राम था, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। सारण जिले के करखा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीराजपुर गांव स्थित एक मदरसा में बम विस्फोट होने की घटना में 2 किशोर घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अररिया जिले के कुआरी थाना क्षेत्र अंतर्गत डाढ़ा पीपर गांव से पुलिस ने 120 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत खानपुर से पुलिस ने 3 युवकों को 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। SDF की टीम ने गया जिले के कुख्यात अपराधी संतोष प्रसाद को औरंगाबाद के तेब से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए। पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के पलथरवा गांव में छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 जवान घायल हो गए। उत्पाद विभाग की टीम ने मुंगेर सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर असीम को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने टेंडर घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 300 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता, 14 को केंद्रीय गृह सचिव ने सौंपा प्रमाण पत्र। दैनिक भास्कर लिखता है, 31 मई को केरल में दस्तक देगा मॉनसून, बिहार में 13 से 18 जून के बीच मॉनसून आने की संभावना। प्रभात खबर ने लिखा है, अगले 3 दिनों तक लू चलने और 19 मई से बारिश के आसार। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, डेंगू के टीके को WHO की मंजूरी। दैनिक आज ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हवाले से लिखा है, गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी जीने का मौलिक अधिकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए राज्य के 8 संसदीय क्षेत्रों में 138 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। राज्य से इस बार 3,820 मुस्लिम धर्मावलंबी हज यात्रा पर जाएंगे। गया हवाई अड्डे से 26 मई को रवाना होगा पहला जत्था। और मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद और गया समेत 12 जिलों में कर्म दिवस की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।